पेज 2 के मध्याह्न में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है और उस बेहद के एक ही बाप के हम शिकिल्ले बच्चे हैं। एक से मतलब क्या हुआ? शिकिल्ले बच्चे हैं माने बहुत सिख सिख से मिले हैं और लंबे समय के बाद मिले हैं। शिकिल्ले होते ही तब है जब बहुत प्यार होता है और प्यार तो तभी साबित होता है जब आत्मा शरीर में हो। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए क्योंकि बाप का लव भी बच्चों में बहुत है। लेकिन कौन से बच्चों में बहुत लव है? जो बहुत सेवादारी हैं, बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बना देते हैं, हमको कांटों से फूल बनाने के लिए बाप आया हुआ है। परंतु वो आत्माओं का बाप खुद कांटों से फूल नहीं बनता है, वो कांटा भी नहीं बनता है तो फूल भी नहीं बनता है। मनुष्य देवता बनना ये तुम बच्चों का अहम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग में हम कौन सा ऊंच पद पावेंगे। उस पद को पाने के लिए हम क्या सेवा करते हैं? घर में भी जो नौकर चाकर आदि होते हैं उनको भी बाप की पहचान देनी है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। माना जो भी कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सेवा तो सभी की करनी है ना। अबलाओं, गरीबों, भीलनियों सब की सेवा करनी है। और गरीब तो दुनिया में बहुत हैं। वो सब सुधर जाएंगे। बाप की शिक्षा पाएंगे तो फिर कोई भी पाप आदि नहीं करेंगे। नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। तुम देखते हो दुनिया में कितनी चोरी चकारी होती है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं ताला क्यों लगावे? परंतु आजकल अपने बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो हवस में आकर के छुपाए कर खाए लेते। जो लोभ वाला होगा वो जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा। अभी यहाँ तो शिव बाबा का भंडारा है, इस भंडारे से तो पाई पैसे की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इस भंडारे का ये ब्रह्मा ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है, तो भगवान के घर में कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी कब कोई के बुद्धि में नहीं आवेगा कि भगवान हमें मिलेंगे तो हम भगवान के घर में चोरी करेंगे। और तुम बच्चे तो जानते हो ऊंचते ऊंचे है भगवान शिव, हम उनके बच्चे हैं, तो हम बच्चों को तो दैवी कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान बाप हम बच्चों को पढ़ाकर सुधारने आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तुम चोरी करने वाले को भी जेल में जाकर के ज्ञान देते हो, तो यहां बच्चे चोरी क्या करेंगे? कब आम उठाया, कोई चीज उठाकर खा ली, ये भी चोरी है ना? ये तो यज्ञ है, कोई भी चीज बगैर पीछे पूछे उठानी नहीं चाहिए। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, भगवान बाप हजार कानों से सुनते हैं, हजार आंखों से देखते हैं, फिर पूछते भी हैं, बच्चे कोई अवगुण तो नहीं है? अगर कोई अवगुण हो तो सुनाई दो, उस अवगुण को मुझे दान में दे दो, दान में दे करके फिर कोई अवज्ञा करेंगे, क्योंकि दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है, नहीं तो फिर बहुत सजाएं खावेंगे। कोई कोई की चोरी की आदत होती है, समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़ा जाता है, कोई दुकान में गया बिस्किट का डब्बा उठाई लिया, कोई कोई चीज ऐसे ही छिपा कर ले लेते हैं। तुमने देखा होगा दुकानदार बड़ी संभाल करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी दुकान है बाबा की, बड़ी गवर्नमेंट है, बड़ी से बड़ी पांडव गवर्नमेंट है जो अपना राज स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूं, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने पांडव पति कृष्ण को कह दिया है, अब पांडव पति व पिता कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाते हैं, इसलिए बाबा भी कहते हैं कृष्ण बच्चा है। राम बाप को कहा जाता है। तो पांडव पति कहो, पिता कहो, ये तो बड़े को कहा जाता है। और वो पांडव पति व पांडवों का पिता कौन है वो तुम जानते हो, जानते हो, हमारे सामने बैठे हैं, हर एक समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं, सेवा करते हैं या डिसर्विस करते हैं। हमारा बाबा हमको विश्व की बादशाही दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते, खुद तो राजा ही नहीं लेते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। ऐसी निष्काम सेवा बाप के सिवाय और कोई कर न सके। मनुष्य तो सब कामना वाले होते हैं, सब मनुष्यों को अपना रख होता है, तो जिनको जिनको अपना रथ है उनको कोई न कोई कामना रहती तो जरूर है, स्वार्थ जरूर रहता है। बाप को तो अपना रथ ही नहीं है तो कामना क्या करेंगे, स्वार्थ क्या करेंगे। बाप जैसी निष्काम सेवा तो और कोई कर ही नहीं सकता। तो देखो बाप कितनी ऊंची सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो गुरु लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, नारे लगवाते रहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देने के लिए अखबारों में भी डालते हैं। यहां तो तुम बच्चे जानते हो कि तुमको तो दुनिया की भारी से भारी प्राइज मिलती है, मिलती उनको है जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो ऊंच के ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना, और ये सेवा तो कोई भी कर सकते हैं। बताना है कि हमको यह बनना है, बताने वाले की बुद्धि में भी होगा है मार्जट कि हमको नर नारायण जैसा बनना है, तो सेवा जरूर करनी चाहिए। इन ब्रह्मा का देखा, इनको भी तो लौकिक परिवार था ना, लौकिक परिवार का बंधन तो था, फिर इनसे भी बाबा ने करवाया। नौ जुलाई 68 की वाणी का तीसरा पेज, इसमें प्रवेश करें इनको भी कराते हैं, कहेंगे कि तुम भी ये करो, तुमको कहेंगे, हमको कैसे कहेंगे। तो देखो हमारे में प्रवेश होकर करते हैं, इसलिए वो करण करावन हार गाया हुआ है। बैठे बैठे कहा चलो छोड़ो, ये तो छी छी दुनिया है, अभी चलो बैकुंठ, अभी हमें स्वर्ग का मालिक बनना है। बस वैराग आ गया। सभी समझते थे इनको क्या होता है, इतना जबरदस्त इनका फायदे वाला व्यापार, लेकिन ये क्या करने लग पड़े पता थोड़ा ही था कि ये क्या जाकर के करेंगे। बाकी छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस त्याग दिए। सो भी बाप यहां ही बैठे बैठे बच्चों की सेवा करते थे, सभी बच्चों को त्याग कराया, अपनी बच्ची को भी त्याग कराया। बोला अभी ये रूहानी सेवा करनी, सभी को पवित्र बनना है। सभी कहते थे ये तो हम ज्ञानामृत पीने जाते हैं, ये नहीं कहते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं, दादा के पास जाते हैं। कहते थे हम ज्ञान सुनने के लिए मातेश्वरी के पास जाते हैं, ओम राजे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। तो ये माता की युक्ति किसने रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश होकर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आवेगा ज्ञान अमृत पी देगा, ये भी ज्ञान है। अमृत छोड़ भी काहे को खाए, भिक को छोड़ दो, ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। जो पावन बनने वाले होंगे पवित्र देवताएं भिक कब नहीं खा रही। शुरू शुरू में ये सब बातें थी, जो आज में सो अंत में भी देखेंगे, कोई भी आवेंगे उनको कहेंगे पावन बनो, अमृत पीना है तो भिक्षु को छोड़ देना है, अभी पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। इसके लिए एक को ही याद करना है, ज्ञान अमृत पीना है तो भिक्ख नहीं पीना है। अब 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, झगड़ा तो जरूर चलेगा। शुरू शुरू की खिचपिट अभी तक चलती आती है, अबलाओं की कितनी मारपीट होती है, और ये सब तो चलता रहेगा क्योंकि काम बड़ा शत्रु है। कामेश क्रोधेश गाया हुआ है, काम की आग पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, काम की चेष्टा पूरी नहीं हुई तो मारेंगे। तो जितना तुम बहुत सेवादारी बनते जावेंगे फिर समझेंगे ये पवित्रता तो अच्छी चीज है। इसके लिए ही हम पुकारते हैं कि हे बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। तुम्हारी भी पहले कैरेक्टर क्या थे, क्या क्या करते थे, अभी तुम क्या बन रहे हो? आगे तो भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर के कहते थे हम पापी हैं, ऐसे हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तुम जानते हो हम तो यह देवता बनते हैं। तो देवता बनने के लिए अपन से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे हमारी ये भंडारी है, इसकी तरफ इशारा किया, बोली दादी तुम बच्चों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक कितनी सेवा करती रहती है, तो देखो उनका कितना पुण्य बनता है, बहुतों की सेवा करती है ना, तो सभी का आशीर्वाद उनके ऊपर आता है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की, तो कमाल है कितना प्रबंध करती है। ये तो हुई स्थूल सेवा, कोई सूक्ष्म सेवा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ शिव बाबा को याद करके भोजन बनावे, जानते हैं एक शिव बाबा की सिवाय और कोई एवर प्योर है नहीं, वही हमारी सहायता करते हैं। गायन भी है शरण परी प्रभु तेरे, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे शरण पड़ी। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो, बाप समझाते हैं आधा कल्प तुम रावण से पीड़ित हुए हो, अभी उस बाप उस रावण से बाप छुआ करके छोड़ाते हैं, तो जानते हो कि बाप के हम शरण में आए हैं। तुम कहते हो बाबा ये पांच भूत बड़े तीखे हैं, जो कि कोई कोई को भूत लगता है ना, अशुद्ध सोल भी आती है, और तुम्हारे को तो कितने भूत लगे हुए, काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत तुमको बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल होगी, कोई कोई को तंग करेगी, परंतु ये तो सांप को तंग करते हैं। तुमको पता है ये पांच भूत तो आधा कल्प से चले आए, इन भूतों से तुम कितने तंग हो पड़े, इन भूतों ने तुमको कंगाल बर्तनाटे पैन ही बनाई दिए, इन भूतों में भी नंबर वन भूत है देह अभिमान, काम भी बड़ा भूत है, इन भूतों ने तुमको कितना सताया है। और बाप ने ये भी बताया है कि कल्प कल्प तुम बच्चों को ये भूत पकड़ते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब को पकड़ते हैं। अभी सभी को भूत लगे हुए, तो कहेंगे ये तो भूतों की दुनिया है, परंतु ये बात भी तुम समझते हो, कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। सत्युग त्रेता में तो भूत नहीं होते हैं। अभी तो एक भूत भी कितना दुखी कर देता है। इन भूतों का किसी को पता ही नहीं है। ये पांच विकार रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर के छुड़ाते हैं। तुम बच्चों में भी कोई कोई बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, जिनकी बुद्धि में फट से बैठ जाता है। तो समझते हैं इस जन्म में तो अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मानो कोई ने चोरी की तो जरूर देवान आया, तो नतीजा क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी यज्ञ में रहते हैं, कुछ न कुछ उठाई लेकर के खाए लेवेंगे। बाप तो कहते हैं कक का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कब नहीं करना चाहिए। संस्कार पड़ जाते हैं, आदत पड़ती है, तो आदत फिर कब छूटती नहीं है। मैं गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए कितना माथा मारते हैं, विकारों के लिए भी कितना तंग करते हैं। विकारों के लिए तंग करने वालों के नाम है सुपनखा, पूतना, दुशासन, आकासुर, बकासुर। सुपर खाने कितनी लड़ाई लड़वाई, पूतना का तो नाम ही है। भूत मान पवित्र ना माने नहीं, जो अपवित्र है विभिचारिणी है, ये सभी नाम अभी के हैं। बच्चे जानते हैं पहले हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अभी हमको बाप की शिक्षा मिली है, अभी हम ईश्वरी संप्रदाय बने। तो बाप हमको कितनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कितनी अच्छी मत देते हैं। नौ जुलाई 1968 की वाणी का चौथा पेज। बाप कहते हैं बेटे बेटे बच्चे मुझे याद करो तो सारा कचरा निकल जाएगा। सोने में से कचरा निकालते हैं ना, तुम जानते हो कचरा निकालने के लिए सोने को कहाँ डाला जाता है? अग्नि में डाला जाता है। ये भी तुम्हारी योग अग्नि है। मैं वेद का सुना रहा हूँ, तुमको बहुत अच्छी युक्ति बताता हूँ। ये जो पांच विकारों की जंक तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है वो कैसे उतरेगी? पक्के सोने पर पांच विकारों रूपी जंक चढ़ी हुई है। सुनार जब जेवर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा शुद्ध चांदी डालते हैं, फिर तांबा लोहा इन सभी का अंदाज करके डालते हैं। 24 कैरेट तो प्योर सोने को कहा जाता है। जो सच्चा सोना होता है वो कब काला नहीं होता। 9 कैरेट का होगा तो काला हो जाएगा। तुम भी अभी काले तमो प्रधान हो गए हो। कुछ डाला तो नहीं गया, जानते हो जन्म जन्मांतर हम नीचे गिरते आए हैं, तो बाप समझाते हैं तुम्हारे में ये जंक लगी है, इसलिए आत्मा तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। अब बनना है तो बाप को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, क्योंकि तुमको मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो कि त्रेता को भी पक्का स्वर्ग नहीं कहेंगे, वहां भी दो कलाएं कम हो जाती है, आत्मा की डिग्री कम हो जाती है, तो सेम ही स्वर्ग है। राम राज्य में दो कला कम हो जाती है, सत्युग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी, मनुष्य बल राम राम करते हैं, माला जपते रहते हैं, परंतु राम राम करने से फायदा तो कुछ भी नहीं। वो राम कोई पतित पावन थोड़े ही है। हाँ, शिव बाबा पतित पावन है, उनको ही याद करना है। वो शिव बाबा है ही सभी आत्माओं का बाप। अभी बाप ने तुमको कितनी समझ दी है, पढ़ाते हैं समझाते हैं, कहते हैं कोई भी छीछी काम नहीं करना है। तुम फूल बनते हो, कांटा खत्म हो जाता है, जानते हो बाबा आया हुआ है हमको फूल बनाने, गाया भी जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, बच्चे जानते हो हम फूल बन रहे हैं, यहां बैठे हो हर एक समझ सकते हैं हम क्या सेवा करते हैं। सेवा करते हैं तो सुखदाई बनते हैं, सुखदाई को फूल कहा जाता है, तो देखना चाहिए हमारे में कौन सा अवगुण है, बगीचे में जाकर देखो, वहां अक सहित सभी फूलों की वैरायटी होगी, फिर देखो फूलों में कितना फर्क होता है। इस दुनिया में भी दुखों की वैरायटी है, वहां नई दुनिया में होती है सुख की वैरायटी। ये वैरायटी क्यों होती है, क्योंकि नई दुनिया में भी पद का फर्क तो पड़ जाता है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो नर से नारायण बनने का, इसके लिए आप अवगुण निकालते जाओ, हर बात में राय लेते रहो, साफ साफ बाबा को बता देना चाहिए, बाबा हमको धंधे में चोरी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, ऊपर नीचे खाना खाना पड़ता है। बाप कहेंगे हर्जा नहीं, लाचारी हालत में शिव बाबा को याद करके खाते रहो। तुम जितना याद करेंगे तो कट उतरेगी जरूर, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बाकी विकार में तो कब नहीं जाना, क्योंकि पावन तो जरूर बनना है। विकार में जाने से तो तौबा भरनी चाहिए। पुकारा ही है, बाबा हमको पति से पावन बनाने के लिए आओ, तो अभी पावन बनने के लिए याद करो ना। याद नहीं करने से फिर खराब काम हो जाता है, उस खराब काम के लिए तौबा भरो, कोई भी बुरा काम नहीं करो। जानते हो कख का चोर सो लाख का चोर, चोरी की आदत पड़ जाती है। पाई पैसे की चीज उठाई, चोरी का इल्जाम तो लगा ना। सभी को समझाते रहना है, बाप का परिचय देना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पाप करते रहेंगे तो सौ गुना दंड पड़ जाएगा। आदत पड़ती है तो बाप को जरूर बताना चाहिए, बताने बगैर कभी छुटकारा नहीं होगा। ऐसे ही करते रहेंगे, सुनाते नहीं है तो वृद्धि को पा जाता है। रोज रोज विकार में जाते हैं फिर बतलाते भी नहीं है, दिन रात विकार में जाते रहते हैं। अब बताओ ऐसों की क्या गति होगी। बाप तो समझाते हैं, तुमको विकार के लिए तंग करते हैं, उनको भी बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। ये बातें तो अभी की है ना, हम विश्व की बादशाही लेंगे। पक्का कर देना चाहिए विकार में कभी नहीं जाएंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी ड्रामा में नूंद है, ये कोई नई बात नहीं है, ज्ञान तो गीता का ही है, जो हर पांच चार वर्ष बाद आकर के बाप सुनाते हैं। भगवान कब आया, वो कौन है, ये बात तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ये भी बाप ने समझाया है कि इतनी बड़ी दुनिया का विनाश कैसे होगा। विनाश के लिए मनुष्यों की सेना आदि की कोई दरकार नहीं रहेगी, एरोप्लेन आदि की भी कोई दरकार नहीं रहेगी। ऐसी चीज बनाई है तो जहां बैठे होंगे वहां ही ढेर हो जाएंगे। अभी सांप के सिर पर मौत खड़ा हुआ है, तो बाप समझाते हैं अभी घर को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे। बस एक ही मूल बात है, इस एक बात में सभी बातें आ जाती हैं। इस याद से तुम 24 कैरेट प्योर बन जावेंगे, फिर तुम स्वर्ग में आ जावेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो बाबा आप आवेंगे, तो हम आपके ही होकर के रहेंगे और कोई की भी बात नहीं सुनेंगे, आपसे ही बरसा लेंगे। अभी बाप आया हुआ है तो ऐसा करके दिखाना चाहिए ना। अपनी जांच रखो कि हम बाबा को कितनी मदद करते हैं। जास्ती कहने की दरकार नहीं है, हम एक बार समझाते हैं दूसरी बार समझावेंगे, फिर तीसरी बार किया तो थप्पड़ भी लगेगा। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, अपनी जांच रखो। अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार हमको कितनी प्राइज मिलेगी? याद करना है तो बहुत सहज, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको अजपा जाप कहा जाता है। अंदर में भी जप नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तीन तरह का जप कहते हैं ना, जोर जोर से झांझ मंजीरा बजावेंगे, जोर जोर से गीत गावेंगे, राम नाम का सारंदा निकल पड़ता है। बाप तो कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल गुप्त पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कराने वाला हम सभी का वो बाप है। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें आवाज की बात नहीं है, इसमें अंदर अंदर समझने की बात है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत भारत का असली वो हिस्सा है कि जब संपूर्ण विनाश होगा तो भी बचा रहेगा, और दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समा जाएगा। उसी तरह जैसे विदेश के देश समा जाते हैं, तो दक्षिण भारत हुआ विदेशियों की भूमि। उस हिसाब से ज्यादा विचार कहां फैलता है, विदेश में या भारत में? विदेश में, इसलिए उनको स्नान करते दिखाया गया। ज्यादा ज्ञान स्नान किसको करना पड़े, जो ज्यादा पतित बने। वी माने विशेष और भू माने उत्पन्न होना। जो विशेष रूप से उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं विभु। उसका
विभु
रघु रघु ऋषि रघु संगीता बनी है उससे। और वो बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। माने ये मान्यता थी कि ऋषियों के बीच में उनके दिमाग में भविष्य जन्मों की और पूर्व जन्मों की बड़ी पूरी जानकारी है, अगुआ है जानकारी के, बड़े पूरे हैं। वो भरी पूरी अगुआ वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। और
सीता देवी ने हनुमान ने सीता देवी के पास राम का उंगलियों लेके गया था,
हनुमान ने सीता देवी के पास जब रावण का लंका में जब था अशोक कानन में, तो हनुमान ने उसी उनके सीता देवी के पास राम का अंगुलिया लेके गया था।
अंगुलिया
अंगुलिया
अंगूठी।
तो देख के सीता देवी को राम राम की स्थिति आ गया था, वो अंगूठी क्या होगा
ग्रोचर से बांधने के लिए।
हनुमान तो ब्रह्मा हो गया ना।
अंगूठी जो है जो पहनी जाती है अंगुली में, वो अंग में इसलिए पहनी जाती है कि जो दूसरों ग्रहों का प्रभाव है वो खत्म हो जाए। सीता ने भी कोई अंगूठी पहनी हुई थी। जब रावण लेकर जाने लगा तो उन्होंने अपने वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह फेंकना शुरू कर दिए। तो सारे आभूषण जो है वो तो उन्होंने फेंके, लेकिन उनके पास कोई आभूषण नहीं था। और राम के पास अपने आभूषण थे, उसमें अंगूठी भी, और अंगूठी एक ही पहनी जाती है कि उंगलियों में अनेक अंगूठियां पहनी जाती है, है? अनेक पहनी जाती है। जो हीरे की अंगूठी होती है वो तो सबसे अच्छी मानी जाती है, और रतन वाली नंबर वार होती है। तो जो नौ रतन है उन नौ रत्नों में सीता वाली आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रहने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? होगी। तो जो जन्म जन्मांतर रहने वाली आत्मा है और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी बन करके रहती है, किसकी? राम की। उस आत्मा की याद स्मृति उनको दिलाई गई, किसको? सीता को। और वो पहचान गई कि ये तो एक ही आत्मा हो सकती है जो जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर रहती है मेरी तरह, और कोई दूसरी आत्मा नहीं है। और उन्होंने पहचान लिया।
तो दिलाएगा
बाबा, किस वाली आत्मा ही तो दिलाएगा ना।
जी
ब्रह्मा
बाबा अब
ब्रेक तो बनी ना,
ऐसा कुछ
इस तरह
देगा।
और ज्ञान को बोला है बीज, और पानी को बोला है बीज पे पानी आएगा तो तब वो बचेगा।
पानी है स्नेह
है, स्नेह है स्नेह का पानी है। और ये भी बोला है कि ज्ञान को ज्ञान को जल भी बोला है,
वही पानी जल है।
और ज्ञान को बीज भी बोला है।
एक
ज्ञान ज्ञान होता है बीज,
और ज्ञान बीज है।
और ज्ञान को पानी भी बोला है,
ज्ञान बीज है।
ज्ञान को
बीज जो होता है
उसमें स्नेह का पानी
उगाने के लिए पानी चाहिए।
वो ठीक है। और
बीज अकेला नहीं अपने आप जमेगा,
पानी पक्का तो
जब तक उसको स्नेह का पानी न मिले।
हाँ। वो तो है। और ज्ञान को फिर जल भी कहा गया है, ज्ञान जल, ज्ञान को जल भी कहा गया। एक ही शब्द को दो जगह से यूज किया है।
तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों का रहस्य खोला गया, वो सारे ज्ञान का निचोड़ आ गया। सारे वृक्ष में निचोड़ क्या होता है? सार क्या होता है? बीज। इसलिए वो बीज कहा गया ज्ञान बीज। इसलिए नहीं कहा गया कि उसमें पानी भी है, इसलिए है जो धर्मराज है या जो जज है, जज की कुर्सी पर बैठने वाला भावना को पकड़ता है या प्रूफ को पकड़ता है? बुद्धि की बात को पकड़ेगा, भावना की बात को नहीं मानेगा। धर्मराज है, धर्मराज भावना के आधार पर फैसला देगा या ज्ञान के आधार पर फैसला देगा? ज्ञान के आधार पर फैसला देगा।
वो जल होगा कि जल माना ज्ञान जल होगा तब वो पक्का बनेगा, ऐसा वो ज्ञान को जल भी तो बोला है।
कोई भी खाया हुआ अन्न हो या बीज हो, जब तक उसको नमी नहीं मिलेगी तब तक वो फलीभूत नहीं होगा। जो भी अपने ऊपर ओझा समझते हैं, जो भी टेंशन आ जाता है दिमाग में, वो ओझा या टेंशन उसमें खुद नहीं रहना है, बाबा को सच्चा सच्चा साफ साफ करके बता देना है। सच्चा साफ होकर के बताएंगे तो बाबा सच्चा बच्चा समझ करके सारा बोझ हल्का करे। जैसे पोता मिल की बात होती है, कोई पोता मिल की गलती हो जाती है, दिल खाता रहता है, बोझ से आत्मा दबने लगती है, दिन दूना रात चौगना बोझ बढ़ता जाता है। जब बाबा को सच्ची सच्ची रीति बता देते हैं तो हल्कापन महसूस होता है। ऐसे ही है दिल की बात, जो अंदर दिल को परेशान कर रही है वो बाबा को बतानी है, दिलावर को बतानी है, तो पूजा हल्का हो जाएगा।
मुस्लिम धर्म जो है, मुसलमान लोग आज जो मोहरम मनाते हैं, तो बिहार मोहरम का अर्थ बिहार में
मुसलमान मोहरम के दिनों में ताजिया उठाते हैं। क्या बड़ा सा ताज बनाते हैं, ऊंचा ऊंचा, थोड़े दिन के लिए जो ताज है वो बहुत ऊंचा उठाई देते हैं और बाद में ले जा करके या तो लपेट के रख देते हैं या समंदर में डाल देते हैं। पहले कम पैसा लगाते थे तो समंदर में डाल देते थे, अभी बहुत पैसे लगाते हैं तो समंदर में तो नहीं डालते लेकिन रख देते हैं संभाल। ये ताज क्या है? ये ताज है जिम्मेवारी का ताज। ब्रह्मा बाप ने अपनी जिम्मेवारी का ताज बच्चों को सौंपा। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी क्या थी? पवित्र नई दुनिया का संगठन स्थापन करना, नई दुनिया की स्थापना। तो जो बाप के बच्चे हैं, बाप गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त है नंबर वार, पद गुप्त है, पुरुषार्थ गुप्त है, सब कुछ उनका गुप्त चलता है। उन्होंने तो उस जिम्मेवारी को जीवन में धारण किया, किसी को दिखाने की चीज नहीं है। और जिन्होंने दिखाया, ताजिया क्या करते हैं, ताजिया दिनों में चारों तरफ घुमाते हैं, दिखाते हैं, देखो हमारा ताज इतना ऊंचा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे भी हुए जिन्होंने वो ताज बहुत ऊंचा कर करके दिखाया कि नई दुनिया की, पवित्र दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज हमने धारण किया है और हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा ताज ये जिम्मेवारी का ताज सबसे ऊंचा है। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है, तो क्या हो गया, जिन्होंने ताज धारण किया उनका उस अल्पकाल के ताज से मोह लग गया, और जिन्होंने उस ताज को दिखाने में डोरियां लगाते हैं चारों तरफ तो सहयोग देते हैं कि हाँ देखो डटा हुआ है ताज। तो जो सहयोगी बनते हैं ढेर के ढेर भीड़ लगाने वाले, उनका भी मोह लग जाता है उस ताज में। मोह लग जाने वाली बात जो है उससे वो बन गया मुहर्रम। अभी भी मोह लगा हुआ है जो जो दादी के फॉलोअर्स है, जानेंगे आगे चल के,
आगे चल के जाने।
अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के मुसलमान है वो तो जान ले।
लेकिन बाबा आज का दिन तो दुख का दिन है ना, महरम में वो दुख का दिन, शोक का दिन कहते हैं।
हाय उसे हम ना हुए
कहते बाबा,
जो नए नए आएंगे मुसलमान धर्म को फॉलो करने वाले वो सोचेंगे ना, कुमार का दादी का इतना अपोजिशन हुआ, शंकर पार्टी निकली, सारा सत्यानाश कर दिया, अगर दादी के साथ हम होते तो हम ऐसा नहीं होने देते।
तो हुसैन का बाबा का हुसैन
वो तो मोहम्मद को ही हुसैन मानते हैं ना।
अच्छा बाबा, वो लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग 33 करोड़ देवता को आप लोग भगवान बोलते हैं, तो भगवान तो एक होगा,
33 करोड़ देवताओं को
भगवान नहीं, ध्यान में चलने वाले हो तो कुछ ऐसी नमाजी लोग बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई अभी भी अज्ञानता जो हिंदू जाति में है, मैंने वैसे लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता को भगवान की आज भगवान बोल के आज दिखाते, लेकिन भगवान तो रियल है, हिंदू लोग का भी एक है वो निराकार भगवान है। तो उसमें वो लोग जो बोलते हैं कि आप लोग यही गलती करते हैं कि भगवान सबको बोल देते हैं, आप
कौन बोल देते हैं,
पूर्वज है मुसलमान लोग,
मुसलमान लोग किसको बोल देते हैं,
मुसलमान लोग जैसे किसी ऐसी बात होती है क्या होती है
तो अरे आपसे तो नहीं बोलते हैं कोई,
उनसे तो बोला गया, पूछा गया, हम कह रहे कि नहीं भगवान तो एक है।
हाँ तो आपसे तो कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि आप 33 करोड़ देवताओं को भगवान मानते हैं,
उनसे नहीं कहता, लेकिन कहता कि आप लोग हिंदू में ऐसा है, अब कह रहे ठीक है उन लोग को भी ज्ञान मिलेगा।
वो कहते हैं आप दुनिया वाले हिंदुओं से ये नहीं कहते कि तुम देवताओं को भगवान क्यों मानते हो, आप ही तो यही कहते हैं, हम भी तो पहले यही मानते थे कि जितने भी 33 करोड़ देवता हैं सब भगवान के रूप में, कोई नई बात नहीं, हम दुनिया की बातें नहीं सुनते, हमें तो जो बाबा ने बातें बोली हैं उन बातों से लेना देना।
चेता में जो दो कला होता है, दो कला जो कम होता है, ये जो सोलह कला है उसका दो कला की सब कला का दो गुण ऐसा कम जाता हो जाता है कि जैसे दो कला कम हो गया ऐसा।
जैसे चंद्रमा की सोलह कलाएं होती
है, तो ये सोलह कला क्या क्या है?
चंद्रमा की जो सोलह कलाएं होती है, अमावस्या के दिन काला हो जाता है, कोई कला नहीं रहती। तो रोशनी का मेजरमेंट है या कोई अलग अलग कलाएं हैं? रोशनी का मेजरमेंट है, ऐसे ही आत्मा का मेजरमेंट है सोलह कला संपूर्ण। ये कोई अलग अलग कलाएं नहीं है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तथाकथित ने बता दिए, नाचने की कला, गाने की कला,
परिवर्तन का परिवर्तन होने का कला।
हाँ जी, हाँ जी, आत्मा की शक्ति को कलाओं से नापा गया है।
मैंने पहन
पेंट पहनता है, शर्ट पहनता है, टाई लगाता है, वो एक पहरवाई। ज्योति पहनता है, कुर्ता पहनता है, एक पहरवाई। नागा साधु लंगोट लगाए लेते हैं, वो उनकी पहरवाई।
तीन आत्माओं को भी बुला गया है कि सोलह कला से भी पढ़े जाने वाले
हैं,
सोलह कला से भी पढ़े जाने वाले
सारे बीज रूप जो है, क्योंकि उन बीजों में इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, है या नहीं? तो उनको कलातीत कहेंगे? नहीं है। जो इस्लाम धर्म के बीज हैं, बौद्ध धर्म के बीज हैं या क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, वो कलातीत तो बनेंगे? नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे कलातीत? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वही कलातीत तो बनते हैं। कलाओं से परे,
मतलब उसको कला में बांधा नहीं जाएगा?
नहीं बांधा जा सकता। जैसे सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही सूर्यवंशियों को भी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता।
तो दीदार में मुक्ति नहीं होता है? दीदार माना,
दीदार माने आंखों से, दीदा दीदा कहा जाता है आंखों को, दीदार माने आंखों से देखी हुई चीज को कहा जाता है दीदार। साक्षात्कार,
और पधारा माना
है,
पधारा पधार
पधारा माने आकर के बैठ गए।